प्रिय दोस्तों, हमारे वेद और पुराण में समय और काल की गणना का प्रचलन रहा है। समय को हमारे साइंटिफिक ऋषि और मुनियों ने चार भागों में बांटा। पहला सत्ययुग, दूसरा त्रेता युग, तीसरा द्वापर युग और चौथा कलयुग। इतना तो आप जानते ही होंगे कि अभी कौन सा युग चल रहा है। तो कौन है ये कलयुग और क्या करता है हमारे साथ और कैसे आया ये हमारे बीच में? भागवत पुराण की हमारी आज की कथा इसी बात पर प्रकाश डालने वाली है। कलयुग की इस कथा से हमें वो मूल भी पता चलेगा जिससे हम सब के बीच में बुराई आकर घर करती है। तो आइए, मैं शैलेंद्र भारती इस कथा का प्रारंभ करता हूं। हमेशा के ही जैसे आज की इस कथा में भी बहुत सारा इतिहास छुपा है हमारे पूर्वजों के बारे में। परीक्षित, जी हां, परीक्षित हमारे उन्हीं पूर्वजों में से एक हैं। बहुत वर्षों तक उन्होंने धर्म पूर्वक राज्य किया था। उनकी पत्नी थी उत्तर कुमार की पुत्री इरावती और एक परम प्रतापी पुत्र जिसका नाम था जन्मेजय। एक दिन परीक्षित सरस्वती नदी के किनारे से जा रहे थे। वो अपने घोड़े पर थे तब उन्होंने एक गाय को देखा जो बहुत ही बुरी अवस्था में थी। उसी समय उन्होंने एक बैल को भी देखा जो बेचारा अपने एक पांव पर खड़ा था। उसके बाकी के तीनों पांव नहीं थे। उसका दुख और पीड़ा आप लोग समझ सकते हैं। परीक्षित भी उस दुखी बैल को देखकर घोड़े से उतरकर उसके पास आए। जब परीक्षित उसके पास आए तो बैल और गाय आपस में बात कर रहे थे। बैल ने गाय को पृथ्वी कहकर के संबोधित किया और पूछा, आप इतनी दुखी क्यों हैं? क्या हुआ? क्या श्री कृष्ण इस धरती को छोड़कर के जा चुके हैं? तो क्या यही आपके दुख का कारण है? गाय ने बैल को धर्मदेव कहते हुए उत्तर दिया, जब श्री कृष्ण यहां आए थे तब उन्होंने आपका भी तो भला किया था और साथ में अन्याय और अधर्म का नाश किया था, पर अब तो कली का ही प्रभाव चलता है जिससे धर्म बस खत्म हो रहा है। गाय आगे बैल को बोली कि इसलिए ही तो आपका बस एक ही पांव बचा है। सतयुग में प्रभु कृपा थी तो बैल के चार पैर थे, तप, पवित्रता, दया और सत्य। फिर त्रेता में केवल तीन ही पैर रह गए और द्वापर में बस दो। और अब कलयुग में उस बैल का बस एक ही पैर जो कि सत्य है वही शेष बचा है। बैल यानी कि धर्म, इसीलिए गाय ने उन्हें धर्म देव कहकर पुकारा। गाय रुकी नहीं, आगे बोली कि कली तो बैल के उस चौथे पैर यानी कि सत्य का भी अंत कर देना चाहता है। इसी बात से गाय इतनी दुखी थी कि कली के इस युग में तो बस अधर्मियों का वास होगा जो ईश्वर को नहीं स्वीकारेंगे और कहेंगे कि पृथ्वी पदार्थों से बनी बस एक पिंड भर है। दोस्तों, बहुत से इंटेलेक्चुअल्स को भी आपने ऐसा कहते अवश्य ही सुना होगा। गाय और बैल में ये सब दुख भरी बातें चल ही रही थीं, तभी अचानक वहां पर वही कली यानी कि कलयुग आ पहुंचता है। देखने में एकदम भयानक आकृति वाला वह कलयुग आते ही उस बैल का चौथा पैर यानी कि सत्य को तोड़ने लगता है। बैल पीड़ा से कराहा उठा। परीक्षित ने पहले तो उन गाय और बैल की बातें आराम से सुनी थीं, पर जब वो कलयुग को उस बैल पर प्रहार करते देखते हैं तो भाग कर आते हैं और अपनी तलवार उस कलयुग की गर्दन पर रख देते हैं। भयानक दिखने वाला कलयुग एकदम से भीरू हो जाता है। एक डरे हुए मानव के जैसे वो परीक्षित के पांव पकड़ करके उनसे दया की भीख मांगने लगता है। परीक्षित उसे स्पष्ट कह देते हैं, मैं अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित हूं, यह मेरी प्रजा है, यहां होने का तुम्हारा कोई मतलब नहीं। तुम आए कैसे मेरे राज्य में? निकल जाओ यहां से। कलयुग और भी स्पष्ट कारण देता है कि पूरी पृथ्वी पर तो परीक्षित का ही राज्य है, वो आखिर जाए तो जाए कहां? और आगे कहता है कि उसे भी तो भगवान ने ही बनाया है और वो तो अपने तय समय पर ही धरती पर आया है। तो अब यदि परीक्षित चाहते हैं कि वो चला जाए तो उसे वो स्थान बताए, कि वो जाए तो कहां जाए। परीक्षित बहुत ही समझदार राजा था। सोचने के बाद वो बोला, तुम वहां रहो जहां ईश्वर का नाम भुलाया जा चुका हो, इसलिए आज से तुम जुए, शराब, काम वासना, हिंसा, असत्य और निर्दयता में निवास करो। यह सुनकर कलयुग थोड़ा कंफ्यूज हो गया। यह तो बहुत सारी जगहें बता दी। फिर से उसने रिक्वेस्ट की कि कोई एक जगह बता दें जहां पर यह सब एक साथ होते हैं, तो वो वहीं पर जाकर के अपना डेरा डाल लेगा और बस जाएगा। परीक्षित ने फिर सोचा और बोले कि स्वर्ण यानी कि सोने में यह सब एक साथ होता है, इसलिए कलयुग स्वर्ण को ही अपना निवास स्थान बना ले। परीक्षित ने सॉल्यूशन तो बहुत ही सोच समझ करके दिया था, पर इसका परिणाम शायद वो स्वयं भी नहीं जानते थे। उनका अपना मुकुट ही सोने का था। उसी समय कलयुग उनके मुकुट में प्रवेश कर गया। धर्मपरायण सदा सच कहने वाले राजा का अंत अब निकट था। दोस्तों, ये थी वो कहानी जहां पर यह बताया गया है कि अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित के समय पर कलयुग धरती पर आ चुका था। श्री कृष्ण के धरती छोड़ने के बाद तो यह होना ही था, पर सबसे बड़ी बात कलयुग रहता कहां है? सोने में यानी कि गोल्ड में, संपत्ति में यानी कि वहां जहां पर जुआ, शराब, काम वासना, हिंसा, असत्य और निर्दयता होती है। हम अपनी रोज की दौड़ भाग में क्या इसी कलयुग के शिकार तो नहीं हो रहे? क्या इसीलिए ही किसी पर भी निर्दयता दिखा देते हैं, या पैसे के लालच में जुए के लिए भी तैयार हो जाते हैं, या हमेशा काम या किसी दूसरी प्रकार की वासना में बंधे ही रहते हैं? धर्म पर चलने वाले परीक्षित ही कलयुग से नहीं बच पाए, तो सोचिए कि यदि हम ऐसा करते हैं तो कलयुग हमारा क्या हाल करेगा। सत्य ही वो आखिरी पांव है जो कलयुग को रोके रखता है। हमें भी सत्य के साथ रह करके इस कलयुग से बचना चाहिए। है ना मजेदार बात दोस्तों? आशा करता हूं कि आप भी इस कलयुग से बचने का प्रयास करेंगे और इस प्रयास में आप अवश्य ही सफल होंगे, ऐसी मेरी ईश्वर के चरणों में प्रार्थना है। तो आज्ञा दीजिए अपने दोस्त शैलेंद्र भारती को। नमस्कार।